आज ही बाबा ने सवेरे मुरली में बहुत अच्छी बात सुनाई थी, आप सबको भी याद होगा। लड़ाई कहाँ होती है? दो चाहिए ना लड़ाई के लिए। तो बाबा ने कहा एक जगह संबंध और एक बंधन, ये दोनों खींचते हैं। किसको खींचते हैं संबंध और बंधन? ये किसको खींचते हैं? जब हम योग में बैठते हैं, बुद्धि को कौन खींचता है? है ना, एक पुराने संबंध है, अच्छे है, वो भी खींचते हैं, और बंधन भी है, वो भी खींचते हैं, एकाग्र करना नहीं देता है। बैठे हो योग करने के लिए तो बुद्धि शुभ बाबा से लगानी चाहिए, एकाग्र होनी चाहिए, है ना। बुद्धि के अंदर हलचल ना हो, हर एक चाहता है, लेकिन बुद्धि के ऊपर प्रभाव है। इसलिए कहा अगर किसी के ऊपर किसी का भी प्रभाव हो, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, है ना, बहुत प्रकार का प्रभाव होता है। अगर प्रभाव है तो उसके जीवन में शांति हो सकती है? प्रभावित आत्मा के जीवन में शांति हो सकती है? नहीं है। प्रभाव मुक्त, इसलिए वो भी आज बाबा ने कहा बच्चों को क्या बनना चाहिए? जीवन मुक्त स्थिति चाहिए। तो कम से कम पहले जीवन में किसे, ये जीवन माना शरीर, शरीर से मुक्त होना चाहते हो तो किससे मुक्त होना चाहिए? जीवन में रहते हुए, शरीर में रहते हुए पहले इन प्रभावों से मुक्त चाहिए। तब कहा प्रभाव मुक्त स्थिति को शांति कहते हैं। अगर किसी का प्रभाव नहीं है, है ना, मन के ऊपर देखो, आप आराम से बैठो, मुरली सुनते हो, सुनते सुनते क्या क्या मन में याद आता है, मन कहां कहां जा रहा है? तो दुनिया कहती है, गीता में भी कहा मन मेरे से लगाओ, मन मना भव कहा, तो मन एक ही लगाएंगे, है ना। अभी आप मुरली सुनने बैठते हो, क्लास सुनते हो, सुन तो रहे हो, श्रवण तो कर रहे हो। अगर आत्मा नहीं होती थी तो शरीर है, आंखें भी है, देख भी रहे हो, तो सुनाई देगा कुछ नहीं। मन तो सुन रहा है, मन राम राम कर रहा है, ओम नमः शिवा कर रहा है ना। तो भटकता कौन है? तो आज तक दुनिया में, शास्त्रों में भी देखो, सिर्फ मन। अभी भी आप किसी से पूछो, मेरा मन चंचल है, मन लगता नहीं है। लेकिन शिव बाबा ने इस धरती पर आकर, भाग्य विधाता ने हमें कौन सी ऐसा नया एक विधान बताया है? बुद्धि योग सिखाया है ना। बुद्धि के अंदर स्वच्छता चाहिए। ग्रहण जो करने वाली है, याद जो रखने वाली है, जो रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, वो कहां हो रहा है? मन के अंदर नहीं होता है, सुना चला गया, बुद्धि के अंदर। तब कहते हैं भारत के अंदर सिर्फ भगवान इनको मन दे दो, कहते हो मंदिर में जाएंगे तो क्या कहेंगे माता ये, भगवान इनको सद्बुद्धि दे दो, है ना। पता है कि बुद्धि याद रखती है, बुद्धि ग्रहण करती है ना। तो मन सुनता है और भूल भी जाता है, तो मन चंचल नहीं है, मन पढ़ रहा है। ध्यान में बैठते हो, देखना आप योग करने बैठते हो, मन के अंदर चिंतन भी चल रहा है, बाबा मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अरे आज किसी को फोन करना था। हाँ, फिर और मुरली का चिंतन, बाबा कहता सुदर्शन चक्कर चलाओ, सुदर्शन चक्कर भी चल रहा है। हम सत्ययुग में देवता थे, है ना, बाबा ने जो पांच बातें बताए थे ना, बच्चे रोज एक्सरसाइज करो, करते भी है, तो मन में करते करते बीच में आते, अरे आज ये काम करना था, तो ये कौन कहता है? बुद्धि के ऊपर पुराने देह के संबंध, कर्म बंधन, बहुत जन्मों का संचित कर्म कहा, बहुत जन्मों के जो इस शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म स्मृति में याद है, मेमोरी में है, वो बीच में जागृत होता है। तो बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, तो इसकी स्पष्टीकरण चाहिए। क्या साइंस ने भी जो आज तक हमको पढ़ाया है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस है ना, तो एक ही भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है। कैसे करता है? दो हाथ जोड़ता है, लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, है ना। नमस्ते किसको कहते हैं? विधि है, छोटी अंगुली से लगनी चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तो भौतिक नमस्ते हो गया। जब ध्यान में योग करने के लिए, कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करना है, पढ़ाई के लिए, तब क्या क्या चाहिए? दो शक्तियां चाहिए। सिर्फ मन अकेला है, मन एकाग्र भी है, और लेकिन एक दूसरी शक्ति बुद्धि भटक रही है, तो भी कोई फायदा नहीं, कर्मों में श्रेष्ठता नहीं होगी। योग में बैठे हो तो भी योग ध्यान नहीं लग रहा है, अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव करने वाला कौन कौन करता? मैड व्यक्ति अनुभव करेगा? उसको पता चलेगा खट्टा है मीठा है? पता चलेगा? तब उसको आप कहते इनकी बुद्धि नहीं, इनको मैड है ना। हमें बुद्धि है, बुद्धि अनुभव करती है। मन चिंतन करता है, तब बाबा ने कहा चिंतन सब कुछ नहीं है, सब कुछ क्या है? अनुभव। अगर अनुभव नहीं किया है तो पावर नहीं, ताकत नहीं है। अनुभव, अनुभवी व्यक्ति माया से हार नहीं खा सकता है, अनुभव नहीं। कभी कभी आप जानते हो, ज्ञान सुना है, चिंतन भी किया है, पता भी है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, जानते भी है, चाहते भी नहीं है, उसके फायदे नुकसान सब जानते हैं, चिंतन बहुत अच्छा किया, लेकिन जीवन में अनुभव नहीं है। तो समय परिस्थिति जब आती है तो पुराने संस्कार काम करते हैं, क्यों? अनुभव नहीं है। अनुभव की अथॉरिटी का आता है। तो बुद्धि क्या चीज है? ये बुद्धि जैसे कि एक दर्पण है, दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ तो आपको अपना स्पष्ट चित्र दिखाई देता है, आप जो हो जैसे हो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन उस दर्पण पर अगर मट्टी लगी हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा? नहीं। बुद्धि के इस दर्पण के ऊपर किसका प्रभाव है? मट्टी का प्रभाव। कहां से आए? तो ऐसे ही बुद्धि के ऊपर भी, बुद्धि रूपी दर्पण पर किसका प्रभाव है? कौन सा मैल जमा हुआ है? जो मन सारे दिन में व्यर्थ चिंतन करता है, पर चिंतन करता है। कारण क्यों करता है? प्रश्न भी आता ना, करता क्यों है? उसका धर्म तो वो नहीं है। कोई गलत विचार करना चाहते हो क्या? नहीं, सभी चाहते हैं, अच्छे विचार करना चाहते हैं, है ना। लेकिन जो बाबा, खास हम बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं, तो बाबा सवेरे सवेरे बच्चों को ऐसे ज्ञान रतन देता है। सुनते हैं हम, लेकिन धारणा नहीं हो रही है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तब कहा, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है, खाने से मोटा नहीं बनता है। तो खाने के बाद क्या करना चाहिए? श्रवण के बाद क्या करना चाहिए? मनन चिंतन करना चाहिए, है ना। जो सुनते हो, जो आपको अच्छी लगती है, एक मुरली के पॉइंट नोट करो, लिखो, तो फिर सारे दिन में कर्म करते करते एक ही पॉइंट बस, अगर वो मन में चिंतन चलता है, कोई सामने मिला उसका वर्णन करते हो तो स्वच्छ मन है, तो उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता, बुद्धि भी स्वच्छ रहती है। नहीं तो बुद्धि को, बुद्धि रूपी दर्पण को मैला कौन कर रहा है? आपने दर्पण तो घर में अंदर लगाया है, रास्ते पर तो नहीं लगाया ना, तो ये मट्टी वहां से, उसके ऊपर कहां से आई? तो ऐसे बुद्धि पहले मन है, तो मन से अंदर बुद्धि के ऊपर कहां से आया ये? तो मन, मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। फिर मन और बुद्धि ये दोनों मिलते हैं, तब संस्कार बनता है। आप जानते हैं, देखना टेप रिकॉर्डर के अंदर भी एक बटन दबाओ तो गीत बजेगा, अंदर जो भरा हुआ मिटेगा, या दूसरा नया भरना चाहिए तो एक बटन दबाने से भरेगा। या मिटाना चाहते हो या भरना चाहते हो तो दो बटन दबाना पड़ता है। तो यहां भी ऐसे ही है, हमारे पास दो शक्तियां हैं। सिर्फ मन चिंतन करता, अच्छा चिंतन कर सकते हो आप, अच्छे किताबें भी लिख सकते हो। तब कहा, श्रवण भी कर रहे हो, बहुत सुनते रहो रोज, तो मनन चिंतन नहीं किया तो अच्छे संस्कार कर्मों में, आचरणों में नहीं आता है। तो इसलिए आज बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि बुद्धि स्वच्छ हो। बुद्धि स्वच्छ के लिए पहले क्या चाहिए? मन, मन को स्वच्छ करना चाहिए। मन का प्रभाव बुद्धि पर है। मन को स्वच्छ रखने के लिए सहज तरीका, आपको कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज जो मुरली सुनते हो, जो बाबा के बच्चे रोज सुनते हैं, चाहे कहीं भी रहो, एक मुरली के पॉइंट ले लो बस। दो लेंगे तो थोड़ा सा लड़ाई होंगी, ये ले लो या वो करो या ये करो, दुविधा होती है। सिर्फ एक, बस एक हीरा रोज लेते जाओ, लेकिन सुनी हुई बातें याद नहीं रहेंगी। अभी भी आप प्रयोग करके देख लो, किसी भाई से पूछो, भाई जी आज मुरली क्या सुनाया था? बहुत अच्छी थी, क्या था वो पॉइंट बताओ? नहीं याद आएगा, क्योंकि बहुत जन्म लेके आए हम, बुद्धि इतनी अपवित्र हुई है तो ग्रहण नहीं करती जल्दी। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर भी जो हेड कहते हैं उसको, उसके ऊपर डस्ट जम जाता है तो आवाज अच्छा नहीं आ रहा है ना। तो हेड क्लीनर कहते हैं, स्वच्छ करते हैं। तो यहां भी बुद्धि को स्वच्छ कैसे करेंगे आप? तो ज्ञान का एक मुरली के पॉइंट, सुनो, लिखो, चिंतन भी करो जितना समय हो सकता है, और तीसरी बात, वर्णन जरूर करो। कोई ना कोई मिले मुख से, सारे दिन के अंदर एक या दो को आज की मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए। इतना अगर आप काम करते हो, देखना आपका मन भी स्वच्छ और उसका प्रभाव बुद्धि स्वच्छ रहती है। और ये मन और बुद्धि दोनों स्वच्छ है, एकाग्रता उसको कहते हैं। ये मन और बुद्धि दोनों जोड़ने चाहिए। इसको शास्त्रों में, गीता में भी कहते हैं, ज्ञानी कौन है? जिसने सारे शास्त्र पढ़ लिया उसको ज्ञानी नहीं कहा, जो सारा दिन में ध्यान में बैठता है उसको योगी नहीं कहा है। ज्ञानी योगी वो है जिसके कर्मों में कुशलता हो। अगर आपके पास ज्ञान है, योग की शक्ति है, ये दोनों कहां उपयोग करेंगे आप? कर्मों में यूज करेंगे ना। तो श्रेष्ठ कर्म ही स्वयं को और औरों को सुख देगा ना। अगर कर्म श्रेष्ठ नहीं है, न स्वयं संतुष्ट है, न दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हो। अभी आप बाबा के घर में सेवा करने आए, अगर आप जो भी काम करते हो अगर श्रेष्ठ काम नहीं हुआ, ठीक नहीं किया, उससे आप खुश हो जाएंगे? अरे आज मैंने ठीक नहीं किया। रोटी पका रहे हो, माताएं रोटी पकाती है, पकाते पकाते जल गया, तो आप खुश हो जाएंगे? अरे आज मेरे हाथ से एक रोटी जल गया, एक के मुंह में जाने वाला था, नुकसान हो गया, है ना। तो खाने, अगर जली हुई किसी को भी मिल जाए, वो सामने वाला खाने वाला व्यक्ति भी आपको दुआ देगा? वो भी कहेगा, देखो किस माताजी ने आज रोटी शकी थी, देखो जल गई, जली हुई रोटी मिल गई मुझको, है ना। तो कर्म श्रेष्ठ कब होगा? वहां भी मन के अंदर ज्ञान का चिंतन चाहिए। क्यों, आप सभी जो बैठे हैं ज्यादा सेवा करने आए ना, बाबा के घर, भगवान के घर में सेवा करने से वर्तमान और भविष्य के लिए भी दुआ जमा करने आए हो। बाबा ने कहा सारा ज्ञान का निचोड़ क्या चाहिए? सिर्फ बच्चे दुआ ले लो, दुआ दे दो। कैसे देंगे? कैसे देंगे? कर्मों से भी देंगे। कर्म भी श्रेष्ठ स्वच्छ होना चाहिए। कर्म ठीक नहीं किया तो दुआ मिलेंगी नहीं, है ना। तो कर्म ठीक कैसे होगा? मन स्वच्छ चाहिए। मन स्वच्छ के लिए मन के अंदर अच्छे विचार चाहिए। तो कहां से लाएंगे आप? बाबा दे रहा है, बिन मांगे आपको रोज सवेरे सवेरे हमें बाबा दे रहा है। एक मुरली के पॉइंट मन में रखो। कर्म करते करते, चाहे कहीं भी करो, कर्म करते करते मन के अंदर चिंतन करो। तो उसको कहा घोटो, है ना, तो नशा चढ़ेगा। तो घोटना माना क्या है? चिंतन। बाबा ने क्या कहा, इसका अर्थ क्या है, ये मुझे कैसे करना चाहिए? तो ये काम चिंतन करते अपने आप को पढ़ाते रहो। सामने कोई आया, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, सामने वाला भी खुश हो जाएगा, देखो मुझे भी याद ही नहीं थी आज बाबा की बात इन्होंने सुनाई, उनका चेहरा भी खुश हो जाता है। ये सबसे बड़ा दान है, ज्ञान दान करो, है ना। कौन करेगा? जिसकी बुद्धि में याद हो। अगर याद नहीं तो दे नहीं सकेंगे आप। तो बुद्धि के अंदर यह धारणा हो तो बुद्धि स्वच्छ होती है। तब कहा एकाग्रता के योग के अंदर जो ये मन और बुद्धि दोनों एक होना चाहिए। फिर पढ़ाई में लगाओ, बिजनेस में लगाओ, या भगवान के ऊपर लगाओ। तो योग में बैठे तो सारे शक्ति को ग्रहण कर सकते हो आप। नहीं तो मन लग रहा है, मन जा रहा है, बीच बीच में बुद्धि दूसरी बातें लाती है ना। तो योग में वियोग हो गया, जा ही नहीं ऊपर, बार बार बुद्धि याद दिलाती है, देखो अभी भी आप यहां बैठे हो, देख रहे हो, देखते देखते थोड़ा सा कोई माताजी उठ गई उधर देखते हो, और कोई आया इधर देखते हो, तो कौन देख रहा है? आंखें अपने आप घूमती है? अपने आप आंखें तो नहीं घूम रहे, कौन घुमा रहा है? घुमाने वाला कौन? आप बैठे हो क्यों? बुद्धि स्थिर नहीं है, तो कैसे करे? इसलिए उसको स्वच्छ करो, फिर दोनों को एक करो। बच्चों को बार बार कहा जाता ध्यान दे के सुनो, वो कहते मैं देख रहा हूं सुन, मुझे लगता आप यहां ही मुझे ही देख रहे हो। कभी कभी ये भी देखना, यहां ही देखते रहते हो, लगता है बहन जी बहुत ध्यान से देख रही है, लेकिन देखते हुए भी याद यहां बैठे बैठे जयपुर पहुंच गए है ना, कौन पहुंच गया हो? हां यहां बैठे हो, हमको भी लगता है बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सुन भी रहे हो, लेकिन घर में बच्चों ने खाना खाया कि नहीं है, वो कौन देख रहा है? बुद्धि नेत्र है ना, बुद्धि यहां बैठे हुए वहां देख सकता है, तो ये स्वच्छ बुद्धि है। यहां बैठे हुए भी ये मन और बुद्धि परम धाम को देख सकता है, परम धाम की शक्ति खींच सकता है, सूक्ष्मतन को देख सकता है, सूक्ष्मतन की बाबा की वाइब्रेशंस को कैच कर सकता है। जैसे आप जानते हो रेडियो ऑन करो तो रेडियो के अंदर न्यूज सुन सकते हो, जो चाहे सुन सकते हो? नहीं। अगर जयपुर की न्यूज सुनना चाहते हो उसका नंबर अलग है, स्टेशन अलग है ना। ऑल इंडिया का सुनना चाहते हो उसका अलग है, बॉम्बे का सुनना चाहते हो उसका नंबर अलग है। तो योग में तो जरूर बैठे हो आप, लेकिन किससे योग लगा रहे हो? योग किससे लगा रहे हो? कोई अपने घर से लगा रहा है, कोई अपने मित्र से लगा रहा है, कोई अपने बिजनेस से लगा रहे जरूर तो है ना। तो हम क्यों एकाग्रता कहा कि भगवान से योग लगानी उसकी विधि है, तो उस विधि पूर्वक अगर अभ्यास करते हो तो सिद्धि प्राप्त होती, शक्ति प्राप्त होती है ना। तो ये विधि कौन सी है? ये मन और बुद्धि को जोड़ने की विधि है, जो आज तक सारे विश्व के अंदर पढ़ाया है कि मन को लगा दो, एक मन को लगा, बुद्धि को लगाओ नहीं कहा। देखो आप भी जानते हैं, आपके सामने देखो, आप सोचना, एक उदाहरण बताता हूं, आपके सामने मैं बैठा हूं, आपके सामने बैठ के मैं पढ़ रहा हूं, और मैं यहां ही देखता हूं, इधर उधर कहीं नहीं देखता हूं, और अच्छी तरह से पढ़ता हूं, गलत भी नहीं पढ़ रहा हूं, यहां ही देख रहा हूं। तुरंत आप पूछेंगे भाई जी अभी आपने क्या पढ़ा? याद नहीं है। जरूर आप कहेंगे ना ध्यान देके पढ़ो, एकाग्र करो। तो ध्यान क्या देना चाहिए, क्या एकाग्र करना चाहिए? मैं देख भी रहा हूं पढ़ भी रहा हूं, तो ध्यान कहां मिलता है? क्या एकाग्र करना चाहिए? मन तो पढ़ रहा है, तो ग्रहण कौन करेगा? बुद्धि है ना, बुद्धि को यहां एकाग्र करो। तब कहा, दुनिया ने कहा सिर्फ मन की एकाग्रता, लेकिन बाबा ने हमको सिखाया मन और बुद्धि की एकाग्रता, मन और बुद्धि को जोड़ दो, दोनों को एक करो। तो कैसे करेंगे? वो है हमारा राजयोग। जब योग में बैठते हो तो इधर उधर कौन भटक रहा है? तो एक करना अभी तक सीखा नहीं, इसलिए आपके आंखें बार बार इधर उधर जाती है कि कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं है। गाड़ी चलाने वाला अगर इधर उधर देखता रहे तो क्या हो जाएगा? गाड़ी तो चल रही है, थोड़ा सा इधर उधर देखेगा तो क्या हो जाएगा? तो वही हाल हमारा होता है। तो इसलिए एकाग्रता क्या है? 5 ही मिनट का काम है, और आप जानते भी है। जैसे देख लो, एक कागज को आप धूप में रख दो, सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन कागज जलता है? नहीं जलता है। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, लेकिन एक ग्लास के द्वारा अगर ग्लास हिलता नहीं है, एक टिक खड़ा कर दो, 1 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा? कागज जल के भस्म हो जाएगा। अगर आप में से कोई स्कूल में नहीं गए हो तो आप कहेंगे अरे आपने तो जादू किया, जादू किया। ऐसे तो नाम है ब्रह्मा कुमार जादू करते हैं, हाँ तो ये जादू हुआ तो क्या, क्यों ज्ञान नहीं समझ नहीं है तो क्या हुआ, वो आप भी कर सकते हो। पहले भी सूर्य की किरणें पड़ती थी लेकिन फैल जाती थी, अपने ग्लास के द्वारा एक जगह पर एकाग्र किया तो सूर्य की किरणें एक जगह एकाग्र करने से कागज को जला सकते हो। ऐसे अपने मन और बुद्धि को शिव बाबा के ऊपर एकाग्र करो, वो कौन है, किसको जलाता है? शिव बाबा कागज को जलाता है, किसको जलाएगा? आत्मा के पाप को मिटाने के लिए आए हैं। तब कहा, आज बाबा ने कहा, भगवान शिव बाबा कौन है? ये लिबरेटर है, पापों से मुक्त करता है और मुक्ति धाम में ले जाता है। मुक्तिदाता स्वयं आ करके स्वयं आके सिखाता है कि अपने हमारे पापों को मिटाने की विधि बताता है और मुक्त करके वापस ले जाता है। तो वो विधि जानना चाहिए ना। तो इसलिए जब भी योग में बैठते हो, कल सवेरे बैठते हो तो देखना, अपने आप से बात करो। तो बात करने के लिए दो चाहिए, औरों से बात नहीं करो, स्वयं से बात करो। मन बुद्धि से बात करता है, अगर बुद्धि से बात नहीं करते हो तो बुद्धि इधर उधर जाएंगी। तो मन बुद्धि से बात करता है, अपने आप से बात करो। मन पूछता है मैं कौन, तो कौन जवाब देगा? जिसने मुरली नहीं सुनी कभी, ज्ञान नहीं सुना, 7 दिन का कोर्स नहीं किया, तो क्या जवाब देगा? तब बाबा ने कहा, बाबा के घर में क्लास में कौन आके बैठ सकते हैं? जो बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, उनको ज्ञान पता है और सुना हुआ है, याद है बुद्धि के अंदर। हाँ, उस दिन बाबा ने कहा था, बहन जी ने 7 दिन का कोर्स कराया था, उस दिन कहा था कि मैं आत्मा हूं, तुरंत बुद्धि जवाब देंगी। अगर जिसने 7 दिन का कोर्स ही नहीं किया, ज्ञान ही नहीं सुना, तो कहेंगे मैं कौन, मैं फलाने बाप का बेटा हूं, मेरा ये नाम है, बताएगा ना, शरीर का नाम बताएगा, ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए ज्ञान चाहिए पहले। तो मन पूछता है मैं कौन, दूसरा पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगी। मन पूछता है, बुद्धि जवाब देती है, दोनों आमने सामने आ रहे हैं। तीसरा पूछो, मेरे गुण कौन से? 7 गुण है आपके, पता है ना, तो रोज इसको याद करते जाओ, जागृत करते जाओ, तो आचरण में आ जाएंगे। नहीं तो नहीं, हमें पता है फिर भी गुस्सा कर रहे हो। पता तो है आपको 7 गुण, लेकिन फिर भी गुस्सा कर रहे हो, तो क्यों जागृत रोज नहीं कर रहे हैं? रोज रोज जागृत करो, मेरा गुण कौन सा है। तो जैसे रोज जागृत करते हैं, करते हो तो जागृत है तो आचरण में भी आएगा। फिर चौथा पूछो, मेरे कर्म क्या, मैं क्या कर रहा हूं यहां बैठकर? शरीर अलग, शरीर को चलाता हूं, मैं शरीर नहीं हूं। पांचवा पूछो, मैं कहां से आया? तो ये 5 ही अंगुलियां एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नमस्ते हो गया ना, हाथ जोड़ गया। तो मन बुद्धि को ऐसे जोड़ दो, फिर ऊपर ले चलो, हम कहां से आए? सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्मतन है। मन पूछता है सूक्ष्मतन में कौन है, फिर पूछो सूक्ष्मतन से ऊपर कौन है? परमधाम है। परमधाम में कौन रहता है? प्रश्न करते जाओ, बुद्धि जवाब देती जाएंगी। तो ये दोनों आपस में मिलके अगर परमधाम तक जाती है, जैसे 2 वायर अगर प्लग में डालो तो क्या आ जाएगा, करंट आएगा ना, तो करंट क्या करेगा? अगर 1 वायर डाल दो तो करंट बल्ब जलेगा? तो ऐसे मन बुद्धि अगर पावर हाउस से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट जोड़ दो, 5 मिनट जोड़ दो, 10 मिनट जोड़ दो, उतने करंट आएगा ना। तो तब बाबा ने कहा, ये करंट, ये शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हमारे पाप को मिटाता है और दिखाई देता है। कैसे पता चलेगा हमारे अंदर पाप है? आप कहेंगे भाई जी हमारे अंदर पाप ही नहीं, मिटाने की तो बात ही नहीं है, पुण्य आत्मा हम यहां बैठे हैं, है ना। बीमार व्यक्ति होगा तो दवाई लेगा ना, बीमारी नहीं तो दवाई क्यों लेंगे। तो कभी कभी कोई कहते हमको ज्ञान सुनना है, योग नहीं करना है, हमारे अंदर पाप ही नहीं है, है ना। आप में भी कोई हो गए तो सिर्फ ज्ञान सुनना चाहिए, क्योंकि औरों की सेवा करना चाहिए। योग करने की जरूरत है नहीं, पाप मिटाना नहीं, पाप ही नहीं है, कैसे पता चलेगा हमारे अंदर पाप है। स्वप्न बताते हैं, हमारी नींद योग निंद्रा का, ड्रीम लेस स्लीप। तन भी सो रहा है तो मन भी सो रहा है रात को, नहीं तो रात को मन टीवी देखता है। बहुत जन्मों से किए हुए कर्म आपको रात को जगाता है। ऐसे ऐसे भयानक स्वप्न आते कहां से आ रहे, आंखें बंद करके सोए हो आप, ऐसे कर्म भरे हुए हैं। उस कर्मों को मिटाने के लिए ये राजयोग है। इसलिए इस प्रकार का योग चाहिए जो हमारे अंदर बहुत जन्मों से जो भरा हुआ पाप है उसको मिटाने के लिए पुण्य आत्मा बनकर वापस जाना है। तब बाबा ने आज कहा, कौन सी आत्मा हो आप, कौन सी आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो। पूजा किसकी होंगी, थोड़ा सा पाप अंदर रहेगा तो होगा नहीं ना। तब बाबा कहता बच्चे रोज एकाग्रता पहले चाहिए, एकाग्रता से मेरे से कनेक्शन जोड़ो, जो शक्ति मिलेंगी पाप मिटेगा। तो पाप मिटते मिटते आपको पता चलेगा, जैसे देखो एक गोली खाते सिर दर्द थोड़ा सा ठीक हो गया, पता चलता है ना, विश्वास होता है। किसी ने आज बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा कि कैसे पता चले मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा, सिर दर्द ठीक हो जाएगा मेरा कैसे पता चलेगा। डॉक्टर कहता है ये 5 गोलियां खा लो तो पता चलेगा। एक गोली खाते ही पता चलता है हाँ थोड़ा सा ठीक हो गया है, ये गोली भी अच्छी है, डॉक्टर भी अच्छा है। फिर दूसरी गोली खाने की इच्छा होती है और एक गोली खा और अच्छा हो जाएगा, हाँ थोड़ा और अच्छा हो गया। तीसरी गोली खाने की इच्छा होती है, अगर एक गोली खाते ही कुछ भी नहीं हुआ, ठीक नहीं है, गोली भी ठीक नहीं, डॉक्टर ने ठीक दवाई नहीं दिया है, फिर भी कोशिश करता चलो और एक गोली खा के देखता हूं, 2 गोली खा के देखते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं, ये डॉक्टर नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना। विश्वास, फेथ चाहिए। विश्वास भी फेथ भी अपने आप नहीं आता है, कुछ करने के बाद होगा ना, कि बिना सुनने से हो जाएगा। दवाई जेब में रख दो बीमारी ठीक हो जाएंगी क्या, विधि पूर्वक लेनी पड़ती है। कभी कभी हम ऐसे करते हैं, मुरली सुनते हैं, नोट करते हैं, और डायरी एक जगह पर और हम एक जगह पर, कहते हमने सारी मुरली नोट किया है, तो उससे हमारे संस्कार स्वभाव चेंज हो जाएगा नहीं, है ना। उसको उपयोग में लाना पड़ता है। तब कहा ज्ञान और योग का प्रयोग अपने स्वभाव संस्कार के ऊपर करो, तब पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, नहीं तो वही स्वभाव संस्कार अभी भी ज्ञान सुनने के बाद समझने के बाद हर जगह पर मैं आगे आ जाऊं, है ना, नहीं मैं आगे नहीं, है ना, मैं आगे आ जाऊं, मैं जो बाबा कहता है वो जाता नहीं है, आदत है, संस्कार है बहुत जन्म के, उसको मिटाना है। अंदर जो गलत संस्कार है, किसी ने कुछ कहा तुरंत गुस्सा करने का, है ना, तो उसको मिटाने के लिए कौन कैसे मिटेगा, अपने आप तो नहीं मिटेगा ना, और बना भी अपने आप नहीं बना है। तो मन के अंदर पहले आता है विचार, फिर बुद्धि महसूस करती है हाँ ये गलत चीज है, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये दोनों मिल जाते आपस में, तब कर्म करते हैं, और कर्म अंदर रिकॉर्ड होता है। एप्पल को देखते ही खाते नहीं, कोई फल को देखते ही खाने की इच्छा नहीं होती है, अरे ये फल खाने वाला कि नहीं है, हाँ ये फल खाने वाला है, बहुत अच्छा है, मन ने कहा, बुद्धि कहती है हाँ 10 साल पहले मैंने खाया था ये बहुत अच्छा है, तो दोनों मिल गए, तो फिर हाथ आगे किया उठा के खाने लगे, है ना, तो संस्कार अंदर रिकॉर्ड हो गया, प्रभाव बन गया। तो ये दोनों मिलना चाहिए। तो इसलिए पहले कहा मन को स्वच्छ करो, फिर बुद्धि स्वच्छ, तो ये दोनों स्वच्छ होने के बाद मिलाने की विधि बताई। इन दोनों को मिलाकर 5 मिनट, बस एक घंटा भी नहीं चाहिए। कभी कभी भाइयों के माताओं के मन में इच्छा होती है कि 2-2 बजे उठ करके, जल्दी उठ करके हम आके बैठे, बहुत योग करें जल्दी पाप मिट जाएगा, और यहां आके बैठ करके नींद करेंगे तो मिटेगा नहीं। इच्छा ये भी एक लोभ है, ये भी लोभ है, बहुत ज्ञान सुनने का लोभ होता है तो ये भी लोभ ही कहेंगे ना। तो कहते हैं थोड़ा सा खा लो लेकिन हजम करो, है ना, थोड़ा सा सुन लो, एक ही मुरली के पॉइंट सुनो लेकिन उसको आचरण में ला लो आज। कल सवेरे दूसरा मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। विधा भाग्य विधाता भाग्य देने आया है, लेकिन कभी भी देख लो आप खाना खाने जाओ, कहीं भी जाओ भीड़ करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं। देखा गया अभी तक भी हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। अभी देख लो बाहर छोड़ेंगे ना, छुटेगा, देखो ना कैसे दरवाजे पर एकदम भीड़ करते हैं। तो क्या क्या जरूरत है, कहां जाना है, ट्रेन छूटने वाली है क्या? तो इतना डिसिप्लिन है, धीरे धीरे एक माताजी जाएंगे उसके बाद दूसरे जाएंगे, है ना, धीरे धीरे जाएंगे ना। क्यों? कारण अभी तक योग नहीं, शक्ति नहीं है, स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं है, लोभ, ये भी दौड़ जल्दी, मुझे पहला लेना चाहिए, मुझे पहला मिलना चाहिए, नहीं, ये अभी तक डिसिप्लिन का उसको। तो कहीं भी धीरे से जाओ, पहले वाला भाई जाएगा फिर मैं जाएगा ना, नहीं मुझे पहला जाऊं, उसको धक्का लगा के पीछे करके मैं आगे जाऊं। यानी कहेंगे कोई भी अगर साक्षी होकर आपको देखेगा, मानेगा आपको कोई कि ये माताजी रोज ज्ञान सुनती है, ये भाई रोज ज्ञान सुनता है, कोई मानेगा? सोच लीजिए आप, बहुत बड़ी बात है। जब बाद में योग लगे नहीं लगे, सिंपल, बाबा जब इधर आता है तो कितनी भागा दौड़ी, दरवाजा तोड़ देते हैं, मिलेगा बाबा? अगर दौड़ करके भागा दौड़ी की लड़ाई झगड़ी कर झगड़ा करके आप इधर आके बैठो, बाबा की दृष्टि मिलेंगी? आप सोच लो, मिलेगा? तो ये भी जरूर चाहिए। देखते हैं सब जगह पर भागा दौड़ी नहीं, धीर्यवत, सावधानी से, लाइन से। ये अगर यहां संस्कार अगर हमने नहीं डाले तो सत्युग में डालेंगे क्या, वहां जाके करेंगे? यहां से होना चाहिए। पहले आप आगे, जो कोई भी आए उसको आगे रख दो, मैं मुझे कहां जाना है, ट्रेन एक छूटेंगी तो दूसरी आ जाएंगी, है ना। तो पहले औरों को जो गड़बड़ी करता है ना उसको आगे दे दो, है ना। तो इसलिए त्याग भावना तब आएंगे जब आपके अंदर ज्ञान समझ में आएगा। अभी ज्ञान सुनते हैं, समझ नहीं, बुद्धि के अंदर धारण नहीं हो रहा, इसलिए त्याग नहीं हो रहा है। हर जगह पर मैं पहला होना चाहिए। तब बाबा ने कहा भाग्य जमा करना चाहते हो, दुआ कब मिलेंगी? तो औरों को आगे करो, ठीक है आप पहले, हो सकता है ये कल से अगर आप आएंगे हॉल में तो लाइन से आएंगे, अभी जाते समय धीरे हो कि एकदम भीड़, दरवाजा टूट जाएगा ना, कितना नुकसान है ना। तो ये चाहिए, ये धारणा है। और ये तब आएंगी कि मन स्वच्छ, मुरली का एक एक पॉइंट रोज याद रखना है, चिंतन करना है कि सुनते हैं, जैसे भक्ति मार्ग में आदत है हमें कथा सुनने की, सुनते हैं और वहां ही छोड़ के चले जाते हैं, तो ये कथा नहीं है, है ना। ये सत्संग जरूर है लेकिन सत्संग के अंदर भी सिर्फ यहां ही छोड़ के नहीं जाना है। इस सत्संग के अंदर सतगति प्राप्त होती है ना, आत्मा को सतगति प्राप्त होती है। कब होंगी? सत्संग से धारणा करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, उस ज्ञान को यूज करना चाहिए। तो ये 3 बातें याद रखना, मन को भी स्वच्छ करना है, बुद्धि को भी स्वच्छ करना है, और इन दोनों को तभी जोड़ सकेंगे, नहीं तो ये दोनों जोड़ते नहीं है, दोनों सदा अलग दिशा में जाते हैं। मन कुछ सोच रहा है। देखो आप योग में बैठते हैं, मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि और कुछ सोचती है, बुद्धि के अंदर और कुछ इच्छाएं हैं, बुद्धि के ऊपर और कुछ पर। इसलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर है मुरली में पॉइंट सुनाया है ना, किसका दो चीजों का, किसकी लड़ाई है, एक संबंध खींचता है और एक बंधन खींचता है, बहुत जन्मों का कर्म बंधन है और एक संबंध भी है, संबंध बहुत मीठा भी है वो भी खींचता है। उस लड़ाई में हमारा समय चला जाता है, जो पाना था वो रह गया। इसलिए इस लड़ाई से मुक्त होने के मन को स्वच्छ करो। तब बाबा ने कहा सर्व संबंध मेरे से जोड़ो। हा? एक बाप हमारा सब कुछ है। देख लो आप भगवान को त्वमेव माता श्च पिता त्वमेव कहते हैं, मां बाप है ना हमारे आत्मा के। टीचर भी कौन है, मुरली ज्ञान कौन सुनाएगा, भगवान का ज्ञान है। किसी साधु महात्मा का देवता का ज्ञान नहीं कहते हैं, भगवान का ज्ञान है। तो टीचर है वो भी है ना, वो भी टीचर भी है, मां बाप भी है, शिक्षक भी वही है ना, उससे से चलेंगे ना, और किससे लेंगे, संबंध हमारा उनसे है। तो इस प्रकार है कि वो संबंध से भी मुक्त, और पूरा संबंध जोड़ने से हमारे कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाएंगे। अगर इस प्रकार देखते रहेंगे आप, अभ्यास करते रहेंगे दिन प्रतिदिन, देखना स्वप्न स्वच्छ होते जाते हैं। और ऐसे एक दिन आएगा एक भी बुरे स्वप्न नहीं आपके अंदर, तब समझना हमारी अवस्था कर्मातीत हो गई है, कर्म बंधन हमें खींचते नहीं है, एक भी बुरे स्वप्न नहीं है। एक दिन नहीं, कम से कम एक महीने तक अगर एक भी बुरा स्वप्न नहीं आ रहा है तो हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, पुण्य आत्मा बन गए हैं। अब इसके बाद जो कुछ करते हो जमा होता जाएगा। अभी भी कमाई कर रहे हो लेकिन पुराना हिसाब किताब चुप तो करने में चला जा रहा है, जमा नहीं हो रहा है, समझ में है। अभी भी करते हो मेहनत लेकिन पुराना हिसाब किताब देना पड़ेगा ना, जमा नहीं हो रहा है। इसलिए इस विधि पूर्वक अभ्यास चाहिए। ठीक है, ओम शांति।